जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया।
चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया।
हे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया।
बहुत सहज योग का अनुभव, क्या अनुभव सभी कर रहे थे। एक अनुभव सुनाता हूं। बाबा को हम सभी याद करते हैं, बुद्धि के विमान से बाबा के पास जाते हैं। कभी याद करके बाबा को आह्वान करते हो, बाबा आकर के इस तख्त पर बैठ जाओ। जिसे दादी वतन में जाती है, शरीर से अलग होकर डिटैच होकर और बाबा को अपना रथ ऑफर कर देती है। बाबा आओ, जो आपको सेवा करनी है करो। खुद सो जाती है, खुद न्यारी हो जाती है और बाबा को अपना रथ दे देती है। आप सभी ऐसा अनुभव करते हो, कभी देते हो रथ बाबा को? बाबा इस अकाल तख्त पर आकर के बैठ जाओ। बाप और दादा संगम युग पर लाइट के तख्त पर विराजमान है, बाबा को अभी कौन सा तख्त है? शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के लाइट के तख्त पर रहता है। स्थूल शरीर नहीं है, लाइट का शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। और जब आता है तो उस लाइट के शरीर के साथ दोनों आत्माएं प्रवेश करती हैं। हम सभी भी बाबा को अपना काल तक ताफर कर सकते हैं। बाबा आओ, इस तक पर बैठ करके सारी दृष्टि सारी सृष्टि को दृष्टि देके जाओ। लेकिन इतना लाइट का तख्त चाहिए। अगर भारी है, तख्त के चार पावे होते हैं, एक भी पाव अगर ढीला हो, ठीक न हो, हिलता हो, नीचे ऊपर हो, तो तख्त काम में नहीं आता है। बाबा ने भी हम सबको यह अकाल तख्त दिया है, श्रेष्ठ स्थिति। अगर हम सभी इस अकाल तख्त को सदा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र रखते हैं, किसी भी प्रकार की गुण और अवगुण बुद्धि में नोट नहीं है, बिल्कुल निश्चिंतता है, बिल्कुल हल्कापन है, बहुत स्वच्छ है, पवित्र है, तो बाबा को यूज करना सहज हो सकता है। नहीं तो हम कहेंगे बाबा आओ और बाबा कहेगा ये तख्त मेरे काम का ही नहीं है। तो सभी ध्यान रखते हो कि कोई भी प्रकार का व्यर्थ, कोई भी प्रकार का परचिंतन, परदर्शन, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी प्रकार की उलझन मन के अंदर इस तख्त पर न हो। बहुत सरल चित्त, बहुत निश्चिंत, बहुत हल्का, बहुत स्वच्छ, बहुत पवित्र, जिसमें किसी भी प्रकार की उलझन नहीं है, हलचल नहीं है, अस्वच्छता नहीं है, ऐसे अकाल तख्त को बाबा भी पसंद कर लेता है। और जब हम सभी याद में बैठते हैं, अगर हम बाबा को ऊपर जाने में कई बार मेहनत लगती है, लेकिन बाबा को आह्वान करके अपने साथ बिठा लें, जैसे बाप और दादा के बीच में मैं बच्चा बैठ गया, जैसे ये दोनों गद्दियां हैं, जब इस गद्दी पर इस बीच में हम बैठते हैं तो क्या अनुभव होता है, एक तरफ बाबा और एक तरफ मम्मा, यही थी ना गद्दी दोनों, शुरू के इतिहास में पढ़ा होगा, देखा होगा कि मम्मा इधर बैठ करके मुरली सुनाती थी और बाबा इधर से प्रवेश करते थे, तो मम्मा चुप होकर के बाबा की तरफ देखना शुरू कर देती थी, जैसे चातक पंछी कोई को देख रहा हो, और बाबा यहाँ बैठ करके बीच में बच्चों को बिठा लेते, और कहते बच्चे अभी वाणी चलाओ, गीत बजवाया, अभी गीत का अर्थ करो। तो माता पिता के बीच में बच्चे बैठते थे, अगर वो जरा भी भयभीत हो जाए, जरा भी डर लग जाए, इतनी बड़ी अथॉरिटी के बीच में मैं बैठा हूँ, तो बेचारा कैसे बोलेगा, कांपने लगेगा। अभी साकार में हम वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, साकार तो अव्यक्त हुआ, लेकिन अव्यक्त रूप में ये अनुभव अगर हम सभी करें, माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों पवित्र श्रेष्ठ नंबर वन आत्माएं, एक ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और दूसरा रूहानी बाबा शिव बाबा, अब दोनों को बुलाओ और अपने साथ बिठा लो मस्तक के बीच में अकाल तख्त पर, और फिर दृष्टि दो, देखो कितनी एकाग्रता है, कितनी स्थिरता है, कितने अच्छे प्रकंपन फैलते हैं, है अनुभव ऐसा करते हो कभी कभी, कोई भी प्रकार की हलचल नहीं। उन सन्यासियों ने, गुरुओं ने शून्य स्थिति को बहुत सर्वोच्च माना है, निर्संकल्प समाधि बहुत बड़ी मानते हैं, और बाबा हमको कहता बच्चे निर्संकल्प समाधि तुम्हारी नहीं है, निर्व्यर्थ और निर्विकल्प समाधि अवश्य, कोई भी प्रकार का जरा भी व्यर्थ प्रवेश न करे, इतनी स्थिरता, इतनी स्वच्छता, इतना मिलन का आनंद है, सुख है, जो आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन के सुख का अनुभव करो, वो सुख का अनुभव इसी मिलन में, समाने के अनुभव में हो सकता है। अतीन्द्रिय सुख जो गोप गोपियों का गाया हुआ है, इंद्रियों का सुख तो आत्मा लेती आई है जन्म जन्म से, अति इंद्रिय इंद्रियों से परे का सुख, वो सुख इसी मिलन में अनुभव कर सकते हैं, जब आत्मा एकदम लवलीन हो जाती है, मगन हो जाती है, एक बाबा दूसरा न कोई, मैं और बाबा बस, संसार से विरक्त अनासक्त अलग हो गए, डिटैच हो गए, वो स्थिति योग में बनती है कि मेहनत है, अभ्यास करते करते सहज हो जाएगा, करके देखना, सिर्फ ऐसे योग नहीं करो, साधारण आए बैठे मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप, चिंतन किया और चिंतन करते करते बैठे यहाँ और मन बाहर भाग रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं, अगर शांत करते हैं तो सुस्ती आ जाती है, आंखें बंद हो जाती है, बुद्धि भटकती है, थकावट का अनुभव होता है, लेकिन अगर इस मिलन का सुख ले लिया एक बार भी आत्मा ने, तो इस सुख में इतना रस है, इतना प्यार है, इतना आनंद है, सुख के अंदर है, जो आत्मा उसी में खो जाती है, समा जाती है, जो कहते हैं संस्कार बदलते नहीं है, परिवर्तन नहीं होते, चलते रहते हैं, कारण क्या है, ऐसा शक्तिशाली योग नहीं है, इसलिए संस्कार वही की वही रहते हैं, बदलते नहीं, ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं बदलते, ऐसे योग लगाने से भी नहीं बदलते, कोई रोज योग लगाए, लेकिन अगर वो सिर्फ नियम पूर्वक कर रहा है, यथार्थ विधि नहीं है, तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं, बाबा कहता मेरे बच्चे संगम युग पर अगर सिद्धि नहीं प्राप्त करेंगे, अगर उनके लिए असंभव है तो किनके लिए संभव होगा। कल वरदान में था ना, असंभव को भी संभव करने वाले तुम, संगम युग असंभव को भी संभव करने वाला है। जैसे हम स्थूल में विकारों को सहज रीति से जीत लेते हैं, प्रवृत्ति में ग्रस्त घर ग्रस्त में रहते हुए एक पवित्र जीवन जो लोगों के लिए असंभव है, बाबा के बच्चे उसको संभव करके दिखाते हैं। प्राप्तियां हैं, कौन मिला है, किसकी श्रीमत है, स्मृति में रहता है तो विकार खींचते नहीं है, विजय हो जाती। भले कभी युद्ध भी हो, लेकिन युद्ध करते करते भी आत्मा विजयी बन जाती है, असंभव बात संभव हो जाती है स्थूल रूप में। और सब बातों को हम असंभव से संभव कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्थिति जिसमें संस्कार बदल जाए वो असंभव बात जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, संस्कार भी कोई चेंज हो सकते हैं क्या, जो बहुत समय से चलते आते हैं कभी न कभी इमर्ज हो जाते हैं, निकल आते हैं, लेकिन कम से कम आधा कल्प के लिए समा जाए, समाप्त हो जाए, जब समय आएगा द्वापर तब अलग बात है। लेकिन जब हमको सत्युग और त्रेता में पार्ट प्ले ही नहीं करना है तो इस समय उनको इतना समा दे जो समाप्त हो जाए। ऐसी शक्तिशाली योग तपस्या की जरूरत है, साधारण याद नहीं, और इसके लिए बहुत कुछ परहेज जरूरी है। अगर परहेज नहीं है तो योग सहज नहीं है, मेहनत कराता है, बैठ जाओ लगेगा ही नहीं, बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, कभी ज्ञान चिंतन करेंगे, कभी रूरियान करेंगे, कभी कोई समान स्मृति, एक रस एक टिक स्थिति नहीं बन सकती, वो सुख स्वरूप की स्थिति नहीं बन सकती। तो मैं जब ये वरदान आज का पढ़ रहा था, सुन रहा था, सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव ब्राह्मण आत्माएं करती हैं। अगर ब्राह्मणों ने सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव नहीं किया तो कौन करेगा। कोई इंसल्ट कर गया, कोई गाली दे गया, कोई कुछ बोल गया और मैं आत्मा बस फील कर लिया, उस फीलिंग के अंदर चली गई, कितना समय हमारा उसके पीछे जाता है। कभी कभी तो आता है ना, हर एक के आगे कोई ना कोई बात तो आती है, कोई ने कुछ कह दिया, कुछ अपमान महसूस हुआ, इसने क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसी बात किया, क्यों ऐसे कहा, चिंतन चल गया, उसमें एक घंटा गया, दो घंटा गया, तीन घंटा गया, या आई बात और उसी समय उसको समाप्त कर दिया। नहीं आया ऐसा तो है ही नहीं, आएगा, पेपर ना आए, परीक्षाएं ना आए और हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं। लेकिन आई कोई बात और उसको हमने फुल स्टॉप लगा दिया, कुछ समय भले चला लेकिन अधिक समय नष्ट नहीं किया। ध्यान है हमारा संकल्प, हमारा श्वास, हमारा समय सफल हो, व्यर्थ न जाए कोई बात में भी। अगर समर्थ है, व्यर्थ नहीं जा रहा है, सफल हो रहा है, तो ये विधि यथार्थ है व्यर्थ को समाप्त करने की। नहीं तो कहीं न कहीं से व्यर्थ प्रवेश होता है और बहुत टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाती है, अपना भी समय जाता है, दूसरों का भी समय जाता है, सुनाएंगे, इधर वर्णन करेंगे, उधर वर्णन करेंगे, ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल लगता है। बाबा कहता तुम बच्चे दुख के संसार से निकल आए हो, तुम दुख क्यों फील करते हो, तुम्हें दुख का अनुभव क्यों होता है, तुम तो दुख की दुनिया छोड़ चुके। लेकिन छोटी छोटी बातें दुखी कर देती हैं आत्मा को, परेशान कर देती, खुशी गायब कर देती, उस सुख के अंदर समाने नहीं देती। ऐसी सुख स्वरूप स्थिति बन जाए उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, बिना ध्यान रखे वो स्थिति नहीं बन पाती है, कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी बहुत अच्छी है, कभी एकदम डाउन है, कभी कभी लगता है मैं तो बहुत ऊंची स्थिति में हूँ, वाह मेरी जैसी कोई की स्थिति नहीं, और कोई थोड़ी सी बात हो गई बस खुशी गायब, नशा खत्म, पता नहीं क्या हो गया, सोडा वाटर, देखते ही लगता है हुआ क्या इसको, अभी इतना अच्छी बातें कर रहे थे, इतना अच्छा उमंग था, उत्साह था, कोई ने थोड़ी सी कोई बात कह दिया, कान में चली गई, बस अंदर चिंतन चल गया और हमारी खुशी ले गई। अब बाबा कहता है बच्चे सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करो, तो उसके लिए कुछ बातें, जैसे बाबा कहता है सुख शांति की जननी पवित्रता है। अगर कोई आत्मा सच्चे सुख का अनुभव करना चाहती है तो संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत बनना होगा। कर्मेंद्रियों जीत, माया जीत, जो आज बाबा के वरदान में था। अगर कर्मेंद्रियां बार बार हमें परेशान कर रही हैं, हलचल में ले आती हैं, अधीन बना देती हैं, तो सुख का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। उस सुख के अंदर, क्षणिक सुख में अगर आत्मा कहीं भी फंसी हुई है, अटकी हुई है, तो ये परमात्म सुख का अनुभव सहज नहीं हो नहीं सकता है। कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन सदा काल उस अनुभव में आत्मा समाई रहे, उसके लिए बहुत मन बुद्धि की स्वच्छता और पवित्रता चाहिए। एकदम विचारों में इतनी स्वच्छता आ जाए, इतनी पवित्रता आ जाए, और उसके लिए आधार है श्रेष्ठ चिंतन। जो विधियां बाबा ने हम सबको बताई हैं, विचार करना कि सवेरे से रात तक के लिए हर बात के लिए बाबा ने कोई न कोई विधि बताई है। और अगर हमको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, कोई भी चीज की सिद्धि अगर मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही है, तो जरूर कोई न कोई विधि की कमी है, विधि पूर्वक नहीं है। वो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमने छोड़ दिया है, ज्ञान योग छोड़ दिया है, पढ़ाई छोड़ दिया, मुरली छोड़ दिया, योग छोड़ दिया, नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी जो यथार्थ विधि है, अगर विधि पूर्वक नहीं है तो सिद्धि नहीं मिल सकती। और विधियां बहुत स्पष्ट बाबा मुरली के अंदर सुनाता है, चाहे सवेरे उठने की विधि है, पहले संकल्प में कैसे बाबा को याद करो। कल बाबा ने कहा साथ के अनुभव द्वारा संभव से संभव होगा, साथ का अनुभव, लेकिन हम बाबा को साथ रखते हैं लेकिन सोचते हैं वो तो निराकार, तो विदेही है, स्थूल में भी तो कोई साथ चाहिए, साकार में भी तो कोई चाहिए, मन का किससे लेन देन करें, मन भारी हो गया, कोई विचार आ गया, अब किसी को तो सुनाना पड़ेगा। लेकिन जो बाबा ने श्रीमत दीदी विधि बताई, उस विधि में जरा भी हमने अपनी मनमत कहीं पर भी ऐड कर दी, मनमत ऐड की या किसी की परमत ऐड कर दी, कोई ने कहा अरे ये तो सब बातें हैं, कौन बना है, कौन कर रहा है, बड़े बड़े भी ऐसे कर रहे हैं, परमत का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, मनमत से भी ज्यादा, परमत इतना पराधीन बना देती है जो सुख का अनुभव करने नहीं देती। कहीं न कहीं ऐसे विचार नेगेटिव, ऐसे साधारण प्रवेश हो जाते हैं, सोचते हैं चलो ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही होगा, पास तो 8 ही होने वाले हैं, कौन 108 पास बनेगा, 16108 की माला में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत साधारण और ऐसे संकल्प जो बार बार आत्मा को ऊंची स्थिति से नीचे ले आते हैं। अगर हम जरा भी मनमत और परमत पर थोड़ा सा, बाबा ने कहा ना अटेंशन और चेकिंग खजाने को संभालने का साधन है, सिर्फ अटेंशन और चेकिंग रखें कि अगर कहीं से भी माया प्रवेश हुई, उसका कारण क्या, दरवाजा कौन सा है, दरवाजा तो कोई खोला है तब तो आया है, व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार, उदासी का विचार, जो हमारी खुशी को छीनने वाला विचार आ गया तो किस दरवाजे से प्रवेश हुआ, कौन सी विधि का मैंने उल्लंघन किया है। सबके पास लिस्ट अपने पास कि बाबा ने ये विधि बताई है, ये विधि बताई है, ये विधि बताई है, चाहे सोने की है, चाहे खाने की है, चाहे पहनने की है, चाहे बात करने की है, चाहे कर्म करने की है, चाहे व्यवहार की है, कोई भी प्रकार की आप पूछो कि इस प्रकार इसके लिए क्या विधि है। कोई भी मुरली ऐसी नहीं है जिसमें बाबा विधियां न सुनाता हो, भिन्न भिन्न विधियां सुनाई हैं। हर एक चीज की विधि है, और अगर विधि यथार्थ है तो 100% उसकी सिद्धि है, गारंटी है। अगर बाबा के बच्चों को नहीं मिलेगी सिद्धि तो किसको मिलेगी। अगर सर्वशक्तिमान भगवान है हमारे साथ, हमारे को निश्चय है, हम पढ़ रहे हैं, बच्चे बने हैं, और हमें नहीं प्राप्त होगी तो किसको प्राप्त होगी। भक्ति के अंदर भी भावना का भाड़ा भगवान ने दिया है, हम तो उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। और बच्चे अगर उसमें दुख और अशांति का कहीं भी अनुभव कर रहे हैं, विघ्न का अनुभव कर रहे हैं, परिस्थिति का, समस्या का, तो कारण जरूर कोई न कोई विधि की कमी है। उसको हम चेक करें, किस विधि को हमने कहीं न कहीं मिस किया है। और हर प्रकार की विधियां स्पष्ट हैं, चाहे वो प्रवृत्ति के लिए हैं, चाहे वो समर्पित जीवन के लिए हैं, चाहे कुमार कुमारियों के लिए हैं, चाहे माताओं के लिए हैं, चाहे भाइयों के लिए हैं। हर एक के लिए बाबा ने कोई न कोई विधि श्रीमत के रूप में बताई है, इस विधि से चलो, इस विधि से रहो, इस विधि से संबंध संपर्क निभाओ। हम सब बाबा की उन विधियों को जरूर स्मृति में रखें, अपने पास नोट रखें, लिस्ट रखें। आंख खुलती है, पहला बाबा कहता बच्चे पहले संकल्प में मुझे गुड मॉर्निंग करो, ये विधि है, यथार्थ विधि, नंबर वन विधि। आंख खुलते ही पहले अपने विदेही, अपने अकाल तख्त पर बैठो, अपने स्वरूप में बैठो, ऐसे नहीं सिर्फ सीधा सीधा बाबा गुड मॉर्निंग साधारण संकल्प करके, आवाज बाबा तक दिल की पहुंचे नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं को, यथार्थ विधि पूर्वक अपनी स्थिति में बैठ करके, इस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके, इस देह से डिटैच हो करके, जैसे मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ और मैं आत्मा बाबा को कहती हूँ बाबा गुड मॉर्निंग, नंबर वन संकल्प, पहला संकल्प बाबा से मिलन का, जिसमें सब शक्तियां प्रवेश हो, बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवेश हो जाए। फिर कर्म क्षेत्र पर जब हम आए तो साथ का अनुभव करें, बाबा की शक्तियां मेरे साथ साथ, मैं कंबाइंड हूँ बाबा के साथ। हर बात के लिए, चाहे भोग लगाने की, खाना खाने की है, भोजन बनाने की विधि है, ऑफिस में या कोई भी प्रकार की दुकान में, नौकरी में, कोई भी कर्म में अगर आप जाते हैं तो बाबा ने पहले विधि बताई है। जैसे कोई कार्य किसी से कराने के लिए जाते हो तो क्या विधि बताई है? अगर कोई ये संकल्प लेकर के जाए ये तो करेगा ही नहीं, बड़ा टेढ़ा आदमी है ये। अगर मान लो आप किसी से कोई काम कराने के लिए जा रहे हो और आपके अंदर ये संकल्प आ रहा है कि ये तो बड़ा टेढ़ा आदमी, बहुत खाने वाला है, रिश्वत लेने वाला है, कैसे करेगा, करेगा ही नहीं, चलो देखें, ट्रायल करें। विधि यथार्थ नहीं है ये। क्या विधि होनी चाहिए? जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, सच्चे दिल की भावना होनी चाहिए, करवाना इसी से है, कौन करेगा दूसरा। इतना अच्छा पॉजिटिव संकल्प, पहले बाबा कहता था धरनी बनाओ, शुरू शुरू में मुरलियां जब चलाई अव्यक्त बाबा, जब विदेश में जब बच्चे जाने लगे सेवा के लिए तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे यहाँ पर हो लेकिन जहाँ जा रहे हो वहां सेवा किया, पहले सोचने लगे ये बाबा क्या कह रहा है। बाबा कहता था बच्चे इतने सूक्ष्म शरीर से वहां जाओ और जा करके उनको पहले संदेश दे करके आओ कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तब सफलता मिलेगी, ये विधि बताई बाबा ने। अगर कोई ऐसे डायरेक्ट चला गया तो कोई ना कोई विघ्न आ सकता, रुकावट आ सकती। किसी भी स्थान पर जाने के पहले अगर हमको 100% सफलता चाहिए तो जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं बाबा कहता उस स्थान को पहले लाइट दो, पहले शुभ भावनाएं, अपने शुभ वाइब्रेशन वहां फैल देखो, पहुंचाओ, और फिर वहां जाओ तो देखो आपको कैसे रिस्पॉन्ड मिलता है। एक बार का अनुभव है, हम लोग सुबह सुबह सोचा पहले सन्यासियों की सेवा का उमंग आया था सबको आबू में, क्योंकि बहुत विरोध था सन्यासियों का, लोग समझते थे सन्यासी लोग कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सन्यासियों को उल्टा लटका दिया जाता है। एक सन्यासी ने अपना अनुभव मेरे को सुनाया था, हम लोग बहुत सेवा करते थे जाके शुरू शुरू में, तो एक गुफा में हम लोग गए, सवेरे सवेरे बाबा ने जो विधि बताई हमने कहा चलो प्रयोग करके फिर चलेंगे, सन्यासियों के पास जाना है, यहाँ गुफाएं बहुत हैं ऊपर ऊपर पहाड़ियों में। तो हम चार पांच भाई गए तो एक ज्ञानेश्वर गुफा है इधर दिलवाड़ा के आगे बहुत ऊंचाई पर, उसके बाद और एक गुफा है उसमें एक सन्यासी रहता है, अभी तो बहुत गाय रखी है, बहुत बड़ा हो गया है, मकान बना, गुजराती है। तो हम चार पांच भाई वहाँ गए सुबह सुबह, लेकिन हमने संकल्प किया था जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले वाइब्रेशन देंगे, योग करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या जो रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि सबके अंदर नेगेटिव वातावरण भरा हुआ था। शुरू शुरू की बात है, अभी तो बहुत चेंज हो गया। तो हम लोग चार लोग भाई तैयार होकर के गए, और जब पहुंचे तो वो हमारे स्वागत में बैठे हुए थे। कहते आओ, क्या है, कैसे, ये तो बहुत तुमने सुना था एंटी लोग हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, क्या हुआ। हमने पूछा फिर कि आप हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय को तो जानते होंगे, सुना होगा। बोला हाँ सुना है, बहुत कुछ सुना है, और ये भी सुना है कि आप लोगों के पास कोई जाता है तो आप उल्टा लटका देते हो। मैं कहा ऐसी बात तो नहीं है भाई महात्मा जी, लेकिन आपने जो सुना है ना, हम आपको निमंत्रण देने ही आए हैं कि आप एक बार देखो। सुनने और देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसे बहुत प्यार से बात कर रहे। बोला आज आप लोग सवेरे सवेरे कुछ किया था क्या। मैं क्यों, बोला हमने देखा कि चार फरिश्ते हमारे पास आए हैं और आ करके हमको कुछ निमंत्रण दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो हम सोच रहे थे पता नहीं कौन आया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला मेरे को। आज अभी अभी आपको देखा तो लगता है कि आप लोग सवेरे आए थे। हमने कहा हम तो नहीं सवेरे आए थे, हम योग जरूर करते हैं सवेरे, संकल्प तो किया था कि आप लोगों के पास आज जाएंगे, ऐसी कोई भावना नहीं थी कि आपसे हमको ऐसे मिले। तो बोलता नहीं, आप सवेरे सवेरे सब आए थे। उनको भी अनुभव होते हैं, कैच होती है बातें। और उसके बाद उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया, जब यहाँ ब्रह्मा भोजन रखा कम से कम 250 सन्यासी आए, पूरे पूरे आबू से इकट्ठे हुए यहाँ पर। एक ही से थोड़ा सा नेगेटिव बोला था, यहाँ आकर के बोला था। तो बाबा ने हम सबको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई न कोई अच्छी से अच्छी विधि युक्ति सिखाई है, समझाई है। सिर्फ उसको स्मृति में रखने की जरूरत है। कार्य व्यवहार में सफलता, संबंध संपर्क में सफलता, व्यवहारिक जीवन में सफलता, सब में सफलता, सिद्धि माना सफलता। अगर हमको सब बातों में सफलता चाहिए, संकल्प भी सिद्ध हो, बोल भी सिद्ध हो, कर्म भी सिद्ध हो, व्यवहार भी सिद्ध हो, हमारे लिए रास्ता साफ हो जाए, कितने भी समस्याएं दुनिया के लिए हो, कितनी भी रुकावटें हो, कितने भी विघ्न हो, कितने भी पेपर हो, लेकिन हम सहज रीति से एकदम बाबा के साथ का अनुभव करते, उनको पार कर ले, कोई भी बात में रुके नहीं, मूंझे नहीं, घबराए नहीं, हमारा निश्चय डगे डिगे नहीं, हिले नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन विधि को यथार्थ रूप से यूज जरूर करो। बिना विधि के सिद्धि नहीं मिलती, और विधि है हर बात की, क्या करूं, कैसे करूं, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। बाबा की मुरलियों में सब विधियां मिल रही हैं, सिर्फ ध्यान से सुनो, ध्यान से उस पर अटेंशन दो, ये विधि है, इससे सिद्धि है। अगर कोई की दृष्टि, कोई की वृत्ति, कोई के संस्कार नहीं चेंज होते हैं, विधि अपना करके देखो। बाबा कहता मस्तक की प्रकृति के बीच पर दृष्टि डालो, आत्मा को देखने का अभ्यास करो, मन और बुद्धि को विजी कर दो। अगर बहुत संकल्प आते हैं, बहुत तूफान आते हैं, बुद्धि को ज्ञान और योग में विजी कर दो, बांध दो इसको, भटकने नहीं दो इधर उधर, सब रस बाबा से लो। तो अगर हम सभी यथार्थ विधियों को ध्यान पर रखते हैं, अगर मान लो बहुत मन परेशान कर रहा है तो भोजन पर भी ध्यान दो। इसलिए हम माताओं को हमेशा कहते, सबसे बड़ी जवाबदारी प्रवृत्ति में माताओं की है। आप यज्ञ के अंदर रह रहे हो, अगर यज्ञ के अंदर कोई भी बच्चे के, कोई भी भाई बहन के संकल्प नहीं ठीक है, कमजोर है, संस्कार ठीक नहीं है, जवाबदारी है कि हम इतना योग में इतने अच्छे प्यार से बाबा को भोग बनाएं और खिलाएं, इतने अच्छे वाइब्रेशन फेंकें जो सब आत्माओं का योग सहज हो जाए, सबके संस्कारों में परिवर्तन आ जाए, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बन जाएगा। लेकिन हम अलबेले हैं, हम उस विधि पूर्वक नहीं चल रहे हैं, और हम कहते फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा ये सोचता है, वो ऐसा सोचता है, क्यों सोचता है। विधि पूर्वक कोई भी कर्म करो, सबसे बड़ी विधि तो स्वच्छता है। स्वच्छता हर स्थान पर, स्वच्छता है तो बाबा की हाजिरी है,
अगर बनाने वाला स्वच्छ नहीं है, अगर उसके वस्त्र स्वच्छ नहीं है, उसके विचार स्वच्छ नहीं है, उसका शरीर स्वच्छ नहीं है, तो भोजन का न भावा स्वीकार करेगा न उसको ब्रह्मा भोजन कहा जाएगा। जवाबदारी हो गई ना, विधि ठीक नहीं है और हम सोचते हैं पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, यज्ञ का भोजन खाते हुए भी आत्माएं पावन क्यों नहीं बन रही है, विधि की कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं भान है हमको, हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, इस कुल के हैं, ये सब ब्राह्मण है, अलौकिक है, क्यों स्मृति रखते हो ये है वो है ऐसे है वैसे है। अगर हम सभी बाबा के बच्चे इस विधि को अपनाएं कि हम तो अलौकिक हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो मर जीवा है, तो कोई भी नेगेटिव कोई भी व्यर्थ संकल्प प्रवेश ही नहीं करेगा और फिर जो कर्म हम करेंगे उसकी सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। तो संगम युग पर हर बात में सिद्धि मिलनी चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं, बाबा से कहो नहीं मुझे करो मदद करो साथ दो सहयोग दो। तो ये बच्चे ने पहचाना नहीं मुझे, अभी तक मांगता है, इसका संबंध ठीक नहीं है। मांगना सिद्ध करता है संबंध ठीक नहीं है। भगत मांगते हैं, बच्चे मांगते नहीं है, अधिकारी होते हैं। जो कुछ बाबा के पास है वो हमारा है, सर्वशक्तियां बाबा के हैं। अगर मास्टर वो सर्वशक्तिमान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मिलेंगी क्यों नहीं मिलेंगी, लेकिन संबंध ठीक है, कनेक्शन ठीक है। रिलेशन कनेक्शन नहीं और हम चाहते हमको सब कुछ मिले तो कैसे मिलेगा। अगर हमें कुछ भी जरूरत है, सहन करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, परखने की चाहिए, निर्णय करने की चाहिए, हर एक शक्ति की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन समय पर वो काम में आए। समय बीत गया फिर याद अरे संभाल लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये बात तो बोलने जैसी नहीं थी, मेरे मुख से निकल गई। है सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, लेकिन सहन नहीं किया, समाया नहीं, तुरंत जवाब दे दिया, अपसेट होकर के डिस्टर्ब होकर के मूड खराब करके बोल दिया, संबंधों में और टकराव पैदा हो गया और बिगड़ गया, जो बनना चाहिए वो बिगड़ गया। आप कहते अब क्या करूं, हो गया काम नहीं किया, सहन करने की शक्ति संभालने की शक्ति, समय पर नहीं, बाद में पछता रहे। दुनिया में भी तो ऐसे ही है ना, पछता रहे, पश्चाताप क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि समय पर परवश हो जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, इतना जोश आ जाता है, इतना अहंकार आ जाता है, कुछ न कुछ कर बैठते उल्टा, और उसकी सजाएं जब खाते हैं तो भूखना भोग करके कहते बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कौन माफ करेगा? अगर मान लो कोई देने लेने से, पैसा रिश्वत देने से माफ भी हो जाए, फिर भी धर्मराज के खाते में माफ होगा? भगवान के खाते से तो कोई उसको छुड़ा ही नहीं सकता है। कर्मों का खाता तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता है, चाहे जो हो, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन अगर परवश स्थिति में स्थित है तो कुछ न कुछ उल्टा होगा। इसलिए बाबा हमको कहता बच्चे परवश स्थिति न बनने दो, अपने वश में रखो, मन को बुद्धि को संकल्पों को अपने वश में रखो, अपनी एक एक कर्मिंद्री को अपने वश में रखो, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित होकर के रहो। जितनी हमारी वो स्थिति बनती जाएगी सब वश में रहेगा और सब वश में हो जाएंगे। किसी को वश में कहने की जरूरत नहीं है, तभी नहीं कहना कि क्या करूं ये वश में नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये कहना नहीं मानता है, सब मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मेरी कर्म इंद्रियां, मेरा मन, मेरा कहना नहीं मानता तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप के स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने आप पर शासन करें। ये विधियां जो बताई हैं बाबा ने वो बहुत इतनी अच्छी हैं, सरल हैं, और सरल शब्दों में बाबा ने बताई हैं, सिर्फ हम उनको स्मृति में रखें और समय पर यूज करें। अपने आप सब कार्य सिद्ध हुए पड़े हैं, सब प्रकार की सफलता हुई पड़ी है, लेकिन विधि हमारी जहां पर भी गलत हुई, यथार्थ नहीं है, वहीं पर लगता है बहुत बड़ा पेपर आ गया, ऐसी समस्या आ गई, ऐसा विघ्न आ गया, बस फिर क्या होता है, गंगा और यमुना दोनों बहने लगती हैं, दुख के आंसू निकलने लगते हैं। बाबा के बच्चों को दुख के आंसू आए, बाबा को भी सहन नहीं होता होगा, मैं समझता हूँ। भगवान के बच्चे ऐसे आंसू आते हैं, क्यों? क्या गलती की है? क्या किया ऐसा? हम सब बाबा के बच्चों को सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव हो और सुखदायी बन करके सबको सुख दें। हम मास्टर सुखदाता हैं। ऐसी सेवा करें जो सबकी दुआएं मिले, और दुआएं मिले तो आत्मा अंदर से प्रसन्न हो जाए। जो कुछ बाबा ने दिया है, रिचेस्ट कहा है, कहा ही नहीं है लेकिन बनाया है, अगर हम उसका चिंतन करें कि हमारे पास गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, ज्ञान का खजाना, अगर मान लो स्थूल नहीं भी है तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब है, जहाँ संतोष धन है वहाँ सब धन अपने आप है, ज्ञान धन है अपने आप धन आता है, उसको भी चिंतन करने की जरूरत नहीं। जो है जितना है उतने में संतुष्ट है, प्रसन्न है, बाबा ने दिया है बस, ये भी मेरा पार्ट है। अगर हम उस स्थिति में स्थित रहते हैं तो हम यथार्थ विधि को यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम सोचते हैं भाई हमारे पता नहीं, हमारा ही हिसाब किताब है, इतने समय से चल रहा है, हफ्ता ही नहीं है, मैं क्या करूं, और अनेक प्रकार की रुकावटें संकल्प से हम क्रिएट करते हैं, अपने संकल्प से बैरियर बना लेते हैं, जब बैरियर बन जाता है ना आगे बढ़ने नहीं देता है। ऐसा कोई संकल्प आए ही क्यों जो हमारे लिए बैरियर बन जाए, रुकावट बन जाए? मंजिल इतनी ऊंची है, हम सब पहुंचना चाहते हैं, संपन्न बने, समान बने, जो संकल्प करें वो पूरे हो जाएं। माता पिता के साथ हम बैठे हैं, हमको एक चित्र बहुत अच्छा लगता है, मैं जब क्लास कराता हूँ कहते सब सामने रखो ये चित्र, देखो झाड़ के अंदर किसके साथ बैठ के तपस्या करते हो, किसके साथ? माता पिता का नाम क्या है? कामधेनु माँ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठी है ना, कामधेनु माँ और कपल मुनि बाप, कपल देव कहते हैं उसको, कपल है ना, कपल माना युगल है ना, कपल देव बाप दादा साथ साथ है। अब ऐसे बच्चे जिन जो कामधेनु माँ और कपल देव बाप के साथ, कपल मुनि बाप के साथ तपस्या करें, इस झाड़ के नीचे तपस्वी होकर के बैठे, उनकी कोई कामनाएं रह सकती हैं क्या? सब सिद्धियां, सब प्राप्तियां, सब संकल्प पूरे होंगे, लेकिन ऐसे तपस्वी बन करके तपस्या करो, पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करो, कोई नेगेटिव आने न दो, नहीं तो फलदायक मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष, इसके नीचे अगर कोई नेगेटिव संकल्प आ रहा तो भी पूरा हो जाएगा और फिर उससे नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, अपना भी नुकसान कर लेंगे दूसरों का भी कर लेंगे। इसलिए बाबा के तब बहुत ध्यान रखना, कभी भी ऐसा संकल्प ना आए जो अपने लिए और दूसरों के लिए घातक हो, नुकसानकारक हो, जो आगे बढ़ने में रुकावट डालने वाला हो। इसलिए ऐसे संकल्प रचो कि मेरा भी भला हो और सबका भी भला हो। सिद्धि स्वरूप बाबा के हम बच्चे हैं, तपस्वी हैं, तपस्वी मूर्त बन करके मात पिता के साथ, कामधेनु माँ और कपल मुनि बाप के साथ बैठकर तपस्या करो, और खुद के लिए ही नहीं करो, ये खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, सारे वृक्ष को दे रहे हैं, इनसे सारा वृक्ष हरा भरा है, इसलिए तो बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा है। सारे वृक्ष को शक्ति प्राप्त हो रही है, हर धर्म को मिल रही है, सब धर्म इसी से निकले हैं, यही बीज में बैठा, तने में बैठा हुआ है। हम सब उस तने की आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। ऐसे नहीं बाबा ने कह दिया हाईएस्ट हो, हाईएस्ट कैसे हो? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ हो, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ हो, इसलिए हाईएस्ट हो। हम ऐसे हाईएस्ट स्थिति में रहें, ऐसे होलीएस्ट स्थिति में रहें, ऐसे रिचेस्ट स्थिति में रहें कि हमारे जैसा कोई नहीं, भले जेब खाली है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दिव्य गुणों का खजाना हमारे साथ है, शक्तियों का खजाना हमारे साथ है, भगवान हमारा साथी है, कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो प्राप्ति संपन्न स्थिति ही सुख का अनुभव करा सकती, प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ही सुख का अनुभव करा सकती, पवित्रता की शक्ति सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करा सकते। मास्टर सुखदाता स्थिति सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करा सकते। तो हम सभी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करें। ब्राह्मण जीवन में संगम युग पर अपने भाग्य का चिंतन करते हुए सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करो और सबको कराओ। ओम शांति।
खुशियाँ ही खुशियाँ पाए।